ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பதிம் சுரகுரும் வந்தே ஜகத்காரணம் வந்தே பன்னகபூஷணம் மிருகதரம் வந்தே பசூனாம் பதிம் வந்தே சூரசசாங்கவநிநயனம் வந்தே முகுந்தப்ரியம் வந்தே பக்தஜனாஸ்ரயஞ்ச வரதம் வந்தே சிவம் சங்கரம் சாந்தம் பத்மாசனஸ்தம் சசிதரமுகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் சூலம் வஜ்ரஞ்ச கட்கம் பரசுமபயதம் தக்ஷிணாங்கீ வஹந்தம் நாகம் பாசஞ்ச கண்டாம் டமருக சஹிதம் சாங்குஷம் வாமபாகீ நானாலங்கார தீப்தம் ஸ்படிகமுனிர்பம் பார்வதீசம் நமாமி. வம்சீ விபூஷிதகரநவநீரதாபாத் பீதாம்பராதருணபிம்பஃபலாதருஷ்டாத் பூர்ணேந்துசுந்தரமுகாந்தரவிந்தநேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத் த்வமஹம் ந ஜானி. வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சஜானூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு. நீலாம்புஜஸ்யாமலகோமலாங்கம் சீதாசமாரோபிதவாமபாகம் பானௌ மஹாசாயகசாருசாபம் நமாமி ராமம் ரகுவம்சநாதம் நமாமி ராமம் ரகுவம்சநாதம். லோகேஸ்மின் விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஜ்ஞான யோகேன சாங்க்யானாம் கர்ம யோகேன யோகினாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கீதா மே கஹதே ஹே கி இஸ் ஸ்ருஷ்டி கே ஆதி கால் சே மைனே ஜீவோ கே கல்யாண கே லியே தோ பிரகார கே மார்க பதாயே ஹே, தோ பிரகார கே நிஷ்டா பதாயி ஹே. லோகேஸ்மின் த்விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஹே அனக மயா புரா த்விவிதா நிஷ்டா புரோக்தா பதாயா ஹே. கோன்சி ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञानी हैं उनके लिए सांख्य निष्ठा कर्मयोगेन योगिनाम और कर्मयोगियों के लिए योग निष्ठा, इस प्रकार की दो प्रकार की निष्ठा अर्थात दो प्रकार की प्रवृत्ति जीवों में अनादिकाल से दिखाई देती है। इसी को ही प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। ये क्यों बताई है? ब्रह्म सूत्र में दो प्रकार की उपासना बताई है, मूर्तंचा मूर्तंच, ईश्वर के दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। आज का जो पर्व है ये शिव पर्व है, शिव पर्व, शिवरात्रि का दिन है कि नहीं? आज आज क्या है? शिवरात्र। शिव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, जो कल्याण स्वरूप है, शिवम कल्याणम, अर्थात जो कल्याण स्वरूप है वही क्या है? शिव है। परमात्मा के दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त रूप भजनीय है और अमूर्त रूप जाननीय है। उपासना भजन मूर्त रूप की होती है, परंतु जानना अमूर्त रूप को चाहिए। भजन के साथ साथ जानना भी हो तो भजन भक्ति बन जाता है, और यदि भजन के साथ जानना नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भजन पुण्य बन जाता है, पुण्य। आप कहेंगे कि भजन भक्ति बनना और भजन पुण्य बनना, इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। भक्ति भजन भक्ति बन जाए तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और भजन पुण्य बन जाए तो लोकांतरों की प्राप्ति होगी। पुण्य का फल परमात्मा नहीं है, भक्ति परमात्मा को मिला सकती है, पुण्य सुख को मिला सकता है, पुण्य सुख दे सकता है, परंतु पुण्य परमात्मा नहीं दे सकता है। अब प्रश्न है कि भजन भक्ति बनना चाहिए या भक्त भजन पुण्य बनना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब परमात्मा को बिना जाने बिना समझे यदि भजन करते हैं तो वो पुण्य जरूर होगा और उससे आपको सुख जरूर मिलेगा, दुख की हानि जरूर होगी, हो सकता है उत्तम लोक की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम में शक्ति है। अग्नि को जानकर के स्पर्श करोगे तब भी हाथ जलेगा और अनजान में भी स्पर्श होगा तब भी हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना है। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन जानकर के करोगे तब भी फल मिलेगा, अनजान में करोगे तब भी फल मिलेगा, परंतु फल में अंतर होगा। भजन भक्ति बनना चाहिए, भजन पुण्य नहीं बनना चाहिए। तो भजन भक्ति कैसी बनेगी? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है रस। रस भजनम नाम रसनम, भजन रस बन जाए। क्या बनना चाहिए? भजन जो है वो रस बनना चाहिए। कौन सा रस? साहित्य में नवरस है, नवरस है ना, आप लोग जानते ही है। परंतु ये साहित्य के रस भजन से नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखो। श्रृंगार रस, करुण रस आदि आदि जो साहित्य में जो नवरस बताए वो तो शब्द जन्य रस है, ध्यान रखना। शब्द के लालित्य से उत्पन्न होने वाले भाव, देखो भजन शब्द शब्द नहीं है। हम तो राम राम का राम राम जपते हैं या टालियां पिटने लगते हैं या मंजिरा ढोल चिमटे बजाने लगते हैं तो कहते भजन हो गया। भजन का अर्थ होता है हमारे मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का समर्पण। केवल वाणी नाम जपती है परंतु मन विषयों में भटकता है, आंख रूपों को देखती है, कान शब्दों को सुनते हैं। तुकाराम ने ऐसी भजन की निंदा की है। भजन ते ओंगलवाने नर का जाने चुके ना, ऐसा भजन जहां आप इंद्रियों की दौड़, मन की दौड़, भोगों की ओर हो, विषयों की ओर हो, वो भजन नहीं होता है। इसलिए भजन में बड़ा संयम चाहिए। और जिस भजन में संयम नहीं है वो असंयमित भजन परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकता है, वो भक्ति नहीं बन सकता है। भक्ति इतनी कठिन नहीं है, सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। हां ये धर्म है, ध्यान रखना, ये सत्कर्म है जो हम मंदिर में जाते हैं, नाम जपते हैं, ये सत्कर्म है, ये धर्म है। हां ये पुण्य जरूर देगा तुम्हें, परंतु परमात्मा को नहीं मिला सकता है, ध्यान रखो। इसलिए आजीवन आप ये करते रहे, आपके जीवन में से ना भय समाप्त हुआ, ना काम क्रोधादि विकारों का प्रवाह मिटा, ना आपकी बुद्धि में स्थिरता आई, ना मन में शांति मिली। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमारा भजन, हमारे भजन में कुछ त्रुटि है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भजन में संयम होना चाहिए, संयम। संयम का अर्थ बांध करके रखना नहीं होता है, हमारी गति एक वस्तु में चलना चाहिए, उसका नाम संयम है। जैसी गोपियों का इंद्रियों की गति, मन की गति, बुद्धि की गति एक ही श्याम सुंदर में चल रही थी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावड़े जन धन माता पिता। तुकाराम ने कहा है कि एक विषय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक विषय। हमारे तो कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है ना? इंद्रिया कुछ करती है तो मन कुछ कहता है, तो बुद्धि कुछ जानती है, एकता नहीं है। और एकता के बिना भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। जो इंद्रिया जिधर जा रही है उधर ही मन जाना चाहिए, उधर ही बुद्धि जाना चाहिए। ये तीन आपके पास साधन है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया कुछ कहे, परमात्मा का नाम, वाणी परमात्मा का नाम जपे, परंतु मन किसी भोग की इच्छा करे वो ठीक नहीं है। जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जो तुम्हें फल चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि भजन भक्ति बनना चाहिए, भजन पुण्य नहीं बनना चाहिए। और सगुण साकार के लिए भजन आवश्यक है, समझे? जो भी परमात्मा का रूप आपने मन में धारण किया हुआ है वो रूप परमात्मा का ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, चाहे कोई भी रूप हो, रूप का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि रूप सत्य नहीं है, वो भजनीय है, वो साधन है, स्वरूप की तरफ ले जाने का रूप साधन है। और रूप साध्य नहीं है, स्वरूप साध्य है। इसलिए किस रूप को आप भजते हो वो प्रश्न नहीं है, परंतु भजते कैसे हो इसका महत्व है, ध्यान रखो। क्या भजते हो उसका महत्व नहीं है, कैसे भजते हो। विषयों का चिंतन करते हुए भजते हो या परमात्मा का चिंतन करते हुए भजते हो? भक्ति का सिद्धांत है परमात्मा का बनकर के परमात्मा को भजो। क्या? पहले हमें परमात्मा का बनना होगा, फिर परमात्मा को भजना होगा, तब भक्ति होता है, ध्यान रखना। हम बनते हैं संसार को और भजते परमात्मा को, तो बनोगे किसका? परमात्मा का कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि भजन पुण्य होता है, भक्ति नहीं। हमें लगता है कि हम परमात्मा को बहुत भजते हैं, परंतु उस भजने का फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम परमात्मा के बने ही नहीं हैं। इसलिए भक्ति में भागो भक्ति, अर्थात परमात्मा के भाग में आप रहो। इसलिए तो भक्ति में त्वदीय भक्ति, मदीय भक्ति बताई जाती है। आप परमात्मा का बनने के बिना परमात्मा आपका बनेगा कैसा? वो तो फिर परमात्मा के साथ व्यापार हो जाएगा। जैसा आप किसी बनिया के दुकान पर जाते हो, बनिया को कुछ देते हो, उसके बदले में बनिया तुम्हें कुछ देता है, तुम लेकर के अपने घर में आ जाते हो, तो क्या बनिया के बन सकते हो? क्या बनिया तुम्हारा बनेगा? ना तो उसके बनोगे ना वो तुम्हारा बनेगा, क्या संबंध रहेगा? ऐसा ही तुम जितना भजन करोगे उतना परमात्मा उसके बदले में तुम्हें दे देगा, थोड़ा सा आनंद देगा, थोड़ा सा सुख देगा, परंतु परमात्मा तुम्हारा नहीं बनेगा, क्योंकि आप परमात्मा के नहीं बने हैं, तो परमात्मा भी आपका नहीं बन सकता है। इसलिए देवो भूत्वा देवम एजेत, ये कहा है, पहला परमात्मा का बनो और फिर परमात्मा को भजो। इसलिए समर्पण की आवश्यकता भक्ति के अंदर बताई है, आत्मनिवेदन अर्थात अपने को दे देना। भले तुम रहो संसार में, परंतु बनो परमात्मा का, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप चिंता मत करिए संसार बिगड़ जाएगा, वास्तविक उत्तम संसार ज्ञानी का ही होता है, समझ रही ना? भक्त का ही उत्तम संसार होता है, भक्त का संसार आनंदमय होता है, आनंदमय सुखमय होता है। अवघाच संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोक, तुकाराम कहते हैं। मैं संपूर्ण संसार को सुखमय बना दूंगा और आनंद से संपूर्ण त्रैलोक्य भर दूंगा, क्या आप कह सकते हो ऐसा? बोलो, क्यों? तुकाराम पहले परमात्मा का बन गए, तब परमात्मा का बनने से तुकाराम का संसार सुखरूप हो गया। तुम्हारा संसार सुविधा रूप है, सुखरूप नहीं है। क्या आपका संसार सुविधा रूप है, परंतु सुखरूप नहीं है? जहां सुख होता वहां सुविधा हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सुविधा में सुख होता ही नहीं है, ध्यान रखो। क्या तुम्हारी ये झूठी कल्पना है कि ये हमारे पास होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो हमारे पास होगा हम सुखी हो जाएंगे? बंबई में जब आता है ना, तब उसके पास कोई फ्लैट नहीं होता है, प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है, तो कहता है कि एक फ्लैट हो जाए, हे भगवान थोड़ी कृपा कर मेरे ऊपर और एक फ्लैट हो जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, है ना? आप लोगों के बंगले बने हो, कितने सुखी हुए हैं मैं पूछता हूं? सुविधा में सुख नहीं, हम सुविधाओं में सुख खोज रहे हैं। सुख परमात्मा में है, परंतु हम संसार में सुख खोज रहे हैं, सुविधाओं में, विषयों में, भोगों में सुख देख रहे हैं। नहीं, भक्त का संसार सुखरूप होता है और संपूर्ण त्रैलोक्य को वो आनंद से भर देता है। त्रैलोक्य का अर्थ होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वो तीनों काल में आनंद रूप रहता है, आनंद रूप। हमारा संसार दुख रूप होता है, क्योंकि सुविधा में हम सुख देख रहे हैं। इसलिए सुख देखना हो तो परमात्मा में सुख देखो, सुख देखना हो तो आत्मा में सुख देखो, वही कल्याण है। और आज का शिव पर्व है, शिव पर्व अर्थात कल्याण का पर्व है। कल्याण बाहर नहीं होता है, ध्यान रखना। कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का तात्पर्य, कल्याण का अर्थ क्या समझते हो आप? क्या कोई वस्तु प्राप्त होना कल्याण है? पुत्र की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, घर की प्राप्ति होना, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, क्या इसका नाम कल्याण है? कल्याण का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। क्या कल्याण का मतलब क्या होता है? बंधन से मुक्ति। आज का पर्व बंधन से मुक्ति का है। जो हम बंधे हुए हैं उस बंधन से छूटने का नाम कल्याण है। कोई वस्तु प्राप्त होना कल्याण नहीं है। जैसा आप समझते हैं कि पुत्र की शादी हो गई तो पुत्र का बड़ा कल्याण हो गया कहते हैं, है ना? वास्तविक शादी की कि बर्बादी की है? आप बताओ कि आपका कितना कल्याण हुआ? शादी आप लोगों ने की, कितना कल्याण हुआ है? कोई छाती पर हाथ लगाकर कह सकते हो कि हमारा कल्याण हुआ है? क्यों? परंतु बर्बाद हुए कह सकते हो कि नहीं कहते हो? कहा महाराज क्या करे, बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, है ना? अर्थात जो हम बंधन में बंधे हुए हैं उस बंधन से छूटने का नाम कल्याण है। किस बंधन में बंधे हैं और उस बंधन से छुड़ाने वाली भक्ति है, ध्यान रखो। क्या? इसलिए तो भक्ति रेव गरी ऐसी कहा है। भक्ति सभी साधनों में ही श्रेष्ठ बताई है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। बंधन से छूटने वाले, छुड़ाने वाले जितने साधन हैं उन साधनों से सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। समझ रही ना? धर्म भी तुम्हें बंधन से छुड़ाता है, परंतु अल्प बंधन से, थोड़े वस्तुओं से, वस्तुओं के बंधन से। आप किसी वस्तु को दान देते हो, उस वस्तु की आसक्ति तुम्हारे अंदर से छूट जाती है कि ये हमने दे दिया, छोड़ दिया उस आसक्ति। धर्म भी तुम्हें आसक्ति से छुड़ा लेता है, परंतु विषयासक्ति से धर्म तुम्हें छुड़ा सकता है, विषयों के बंधन से तुम्हें छुड़ा सकता है। परंतु भक्ति तुम्हें अपने बंधन से छुड़ाती है, ध्यान रखो। क्या करती है भक्ति? विषयों के बंधन से नहीं छुड़ाती है, तो तुम्हें अपने बंधन से छुड़ाती है। तुम अपने बंधन से बंधे हुए हो और उसी छूटने का नाम ही वास्तविक कल्याण है। क्या? पत्नी के बंधन से या पति के बंधन से या घर के बंधन से छूटना कल्याण नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे तो बैरागी बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने घर छोड़िया है, बाल बच्चों को छोड़ा है, धन संपत्ति को छोड़ा है, नंगे घूमते हैं पशु के समान, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बंधन से छूटे हैं।